Okay. मम ज्ञान तिमिरांधश्रीनानां जनमशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपकदामयं ददाति सुप्रभातम्. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द सद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवंश. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम. ओके सो टेक्स्ट नंबर 4 तक हमने पढ़े थे शायद, इफ आई रिमेम्बर. किसी के पास है लिखा हुआ? 4 तक पढ़े थे, 4 तक. ओके सो हम 5वें श्लोक से आरंभ करते हैं इसको. सो टेक्स्ट नंबर 5 समबडी कैन रीड.
कूटनीति के बारे में
हाँ, हाँ, आप कुछ 8 दुर्योधन की कूटनीति का आपको लिस्ट बनाना है जो आने वाले कुछ 5-6 श्लोकों के अंदर आएगा, जिसमें से दुर्योधन अभी 1-2 चीज बताई है, अभी आगे भी बताएगा दुर्योधन. सो वी कंटिन्यू विद द श्लोक, 5 नंबर का श्लोक. हाँ पढ़िए, कोई भी एक ट्रांसलेशन पढ़िए.
चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा सैभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है.
छठा भी पढ़ लीजिए. छठा भी.
पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है.
और 8वां 7वां.
किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है.
तो यहाँ पर अलग अलग नाम लिस्ट है पूरा. दृष्ट केतुश्चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, कुरुजित कुंती भोजश्च, सोमदत्तो महाराज, तो सौभद्र द्रौपदी आश्च सर्वे, ऐसे बहुत सब ऐसे नाम है, एक के बाद एक नाम आते रहते, अलग अलग नाम, राइट. तो कोई ये प्रश्न कर सकता है कि ओए हम ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग दृष्ट के चकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, सौभद्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सब लोगों का गुणगान गाने से क्या फायदा, उन लोग का नाम उच्चारण करने से क्या फायदा. कले कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है वो केवल. कलयुग की तो कलयुग में तो हरि नाम का उच्चारण करना है, पर ये तो कौन से नाम आ रहे हैं. कई बार लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल श्रीमद् भागवतम में कई प्रकार के विषय का चर्चा हो रहा है, कई प्रकार के विषय सुनने में पढ़ने में ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवतम में इस विषय की चर्चा करने की क्या आवश्यकता है. या फिर कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अभी द्रोणाचार्य ये इसका बेटा अश्वत्थामा ने परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, बहुत गुस्से में आ गया, तो ये सब बात बताने की क्या आवश्यकता है. कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछते, जैसे ये पहले भगवद गीता के पहले चैप्टर में तो कुछ नहीं है, केवल तो दो कुछ नामों का लिस्ट आता है, बस डिस्क्रिप्शन है, इट्स ओके. No, then why is it important? अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्यों रखा है भगवदगीता में. व्यासदेव के पागल है कि जिन्होंने भगवदगीता के फर्स्ट चैप्टर को प्लेस दिया और उसमें ये सब श्लोक का उच्चारण किया. नहीं, प्रभुपाद बताते एक लेक्चर में कि भगवान के सामने ये जितने भी लोग उपस्थित थे जिसका नामों का उच्चारण हुआ है, ये सारे भगवान की इच्छा से उधर एकत्रित हुए हैं. कोई अपनी इच्छा से नहीं आया है, एक रूप से देखो तो अपनी इच्छा से आया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान की इच्छा से है. भगवान चाहते थे कि सब लोग एक साथ इकट्ठे हो और एक साथ युद्ध हो, खत्म हो जाए. क्योंकि दर्जी ने प्रार्थना की थी कृष्ण को भूभार हरण के लिए, ये पृथ्वी का भार कम करो, बहुत ज्यादा हो गया है सब लोग इसमें, और एक छोटा प्रलय की आवश्यकता थी, युग की संधि होने वाली थी, युग खत्म होने वाला था. तो 64 करोड़ लोग एक स्थान पर इकट्ठे हुए और जिसमें पांच पांडवों को छोड़कर कोई बचा नहीं, दोनों साइड सब मर गए, दोनों साइड में कोई नहीं बचा पांच पांडवों को छोड़ करके। तो भगवान चाहते थे कि युद्ध हो, हालांकि वो चाहते थे बाहर ऐसा दिखाया कि युद्ध ना हो, बहुत प्रयास किया युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध युद्ध का अर्थ क्या होता है, बैटलफील्ड का अर्थ क्या होता है, आज के समय की बैटलफील्ड अलग है, पहले बैटलफील्ड अलग होती है। बैटलफील्ड का अर्थ होता है एक बार दो सेना युद्ध के क्षेत्र में जब आती है तो एक का मृत्यु और दूसरे का विजय, ये निश्चित है, इसमें दोनों पक्ष जीवित रहे ये संभव नहीं है, एक का मृत्यु निश्चित है, वो मरेगा लेकिन युद्ध छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये पहले के समय के युद्ध होते थे, तो युद्ध इसलिए दुखद घटना होती थी, युद्ध करना दुखद घटना, क्योंकि इसमें हजारों लोग मर जाते हैं, अनेक फैमिली उजड़ जाती है, बहुत सारी समस्या आती है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि इन सब लोगों जब इकट्ठे हुए और भगवान ने क्या सोचा, ऐसे नहीं कि बस खत्म करो एक साथ लॉर्ड को खत्म करो और खत्म युद्ध हुआ मर गए सब, ऐसा नहीं। भगवान चाहते थे कि सबको मुक्ति प्राप्त हो, अगर ये सब लोग अपने अपने देश में जाके मरेंगे तो इनको कुछ नहीं लाभ होने वाला, लेकिन अगर ये लोग मेरे सामने आके मेरी उपस्थिति में मरेंगे तो कम से कम मुक्ति तो प्राप्त होगा, है ना। भगवान की उपस्थिति थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो भगवान की उपस्थिति के सामने उनकी मृत्यु हुई, इससे उनकी मुक्ति प्राप्त हुई। तो भगवान पूर्ण है, उनका रक्षा करना और उनका मारना ये दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। जैसे भगवान अगर किसी को दंड देते हैं तो इसका नुकसान नहीं होता, कहा जाता है कि कृष्ण के द्वारा दंड लेना ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, सबको दंड मिलता भी नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को कृष्ण के द्वारा दंड प्राप्त होता है वो सब प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है, है ना। जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह के रूप में अगर किसी को दो चार थप्पड़ मार दे, अगर कोई ऐसा लीला होता है कई बार जगन्नाथ जी का कि वो स्वयं भक्त को दंड देते हैं किसी कारण से, तो इससे तो बहुत अच्छा होता है, इससे तो जितने भी आपके अपराध है पाप है सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप जानबूझ के गलती करो और फिर लाइक कृष्ण यू कम एंड बीट मी, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य इसका अर्थ ये है कि भगवान रक्षा करे या भगवान मार दे, दोनों एक समान है, दोनों पवित्र है और दोनों ही मुक्ति देने वाले हैं। यह है कृष्ण का आध्यात्मिक लक्षण। अगर और कोई व्यक्ति मारेगा तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन कृष्ण मारेंगे तो मुक्ति मिलेगी, यह उसका स्पेशल बेनिफिट है। और दुर्योधन अभी बताना चाहता है कि सामने वाली ये जो सेना है उसमें तो इतने सारे लोग हैं, तो हमारे यहाँ पर कोई ऐसे इकट्ठा नहीं किया ऐसे भीड़, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे योद्धा है। तो अभी दुर्योधन बताना चाहता है कि अब हमारी बात सुनिए, हमारे पास क्या है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास क्या है, सुनो पढ़ो आठवां।
मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे।
हाँ, तो एक रूप से देखा जाए तो दुर्योधन में थोड़ा सा भय था सामने वाली सेना को लेकर के, लेकिन अगर वो ऐसा बोलेंगे कि सामने की सेना में तो बहुत बड़े बड़े महारथी है तो क्या हो सकता है, बाकी की उनकी सेना के जो लोग हैं और योद्धा लोग हैं वो लोग क्या कहेंगे, या तो सामने चले जाएंगे या तो फिर वो सोचेंगे यार पहले से युद्ध होने से पहले ही हम लोग ऐसे कमजोर है तो हम युद्ध क्यों करें। सोच सकता है ना, कोई व्यक्ति सोचे भाई मैं इतना दूर से इधर आया हूँ युद्ध करने के लिए और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सामने बहुत अच्छा पावर है तो भाई चलो वापिस घर क्यों करे युद्ध, कहीं मरने थोड़ी आए इधर। तो यहाँ पर दुर्योधन ने बताया हमारी सेना में बहुत सारे लोग हैं, भगवान भीष्मस्य कर्णस्य। तो यहाँ पर दुर्योधन ने सोचा किसका नाम पहले ले, उस समय तो क्या बोला भीम अर्जुन का नाम बताया था राइट, लेकिन हमारे यहाँ पर कौन है, भीष्म तो सबसे बड़ा है, भीष्म के सामने कोई ऐसा योद्धा नहीं है कि जो टिक सके, अर्जुन भी नहीं। अर्जुन इतना, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था आपको कि अर्जुन इतना स्ट्रॉन्ग था युद्ध विद्या में कि उसके जैसा कोई नहीं था युद्ध में, लेकिन भीष्म के पास जो विद्या थी, भीष्म के पास जो युद्ध विद्या थी, परशुराम को भी हरा दिया था। तो भीष्म के पास जो विद्या थी युद्ध की वो तो किसी के पास थी। अर्जुन भी अगर कृष्ण नहीं होते उनके साथ तो अर्जुन भी हार जाते भीष्म के सामने। तो भीष्म के पास इतनी शक्ति थी इसलिए, और वो सबसे वृद्ध थे, सबसे बड़े थे दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों ही कुरु सेना थी एक रूप से देखा जाए तो, लेकिन भीष्म सबसे बड़े। लेकिन अब क्या करें, हम बात तो कर रहे हैं द्रोणाचार्य के साथ, बात तो द्रोणाचार्य के साथ हो रहे ना, जब हम शुरू शुरू में बात किया तो द्रोणाचार्य के पास गए थे और भीष्म को चीफ बनाया था कि भाई ही इज द चीफ कमांडर इन चीफ, कि वो सारी जो सेना है उसका नेतृत्व वो करेंगे, जैसे सामने पक्ष में धृष्टद्युम्न था, पांडवों की सेना का जो लीडरशिप होगी वो ये धृष्टद्युम्न के, और कौरव सेना की जो लीडरशिप होगी वो भीष्म के पास। लेकिन दुर्योधन ने सोचा कि मैं द्रोणाचार्य को ऐसा कहूं कि भीष्म और द्रोण, द्रोण भी तो कोई कम नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम था कौन सा नाम पहले बोले, भगवान भीष्म बोले या द्रोणाचार्य, भीष्म बोले या द्रोणाचार्य। फिर उसने सोचा कि भीष्म क्षत्रिय है और द्रोण ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को पहले होना चाहिए और क्षत्रिय को बाद में होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा योद्धा हो ब्राह्मण तो सब पहले होता है। तो इसलिए उसने यूज किया ट्रिक कि भगवान आप सबसे महान हो ऐसे, हालांकि भीष्म सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन उसने क्या यूज किया, द्रोणाचार्य को अच्छा लगे इसलिए उसने बोला कि भगवान आप और भीष्म, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च। भीष्म के विषय में उसने इसलिए ये इसलिए भी बताया था कि भीष्म द्रोणाचार्य का आदर करते थे तो इस बात को एक्सेप्ट कर ही लेंगे कि भाई आप भीष्म को बुरा नहीं लगेगा। और दूसरा एक ये भी था कि भीष्म का भरोसा कम था, भीष्म हमारी युद्ध का विजय चाहते कि नहीं चाहते ये 100% पक्का नहीं था उसको, दुर्योधन को, क्योंकि पांडव उनको बहुत प्रिय थे, तो ये समस्या थी उसके। तो भगवान भीष्मश्च कर्ण, कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, कर्ण ऐसा योद्धा था जिसने अर्जुन को हिला दिया था, हालांकि उसके पास धर्म नहीं था, दानवीर था, कर्तव्य पालन में बहुत ऐसे योद्धा था, लेकिन शास्त्र के आधार को नहीं मानता था, भगवान की अथॉरिटी को नहीं मानता था, यह उसकी समस्या थी और उसकी दुसंगति थी दुर्योधन के साथ, इसलिए तो उसमें बहुत सारे गलत विचार आ गए थे, दुर्गुण आ गए थे जो उसको नहीं करने चाहिए थे। तो कर्ण का नाम यहाँ पर यूज किया है, लेकिन कर्ण के विषय में ऐसा कहा गया है कि कर्ण को युद्ध नहीं करने दिया, कर्ण ने भीष्म ऐसा कहा कि जब तक मैं युद्ध करता हूँ तब तक वो नहीं रहेगा। अभी कर्ण ने भी ऐसा बोल दिया सामने, कर्ण ने कहा कि जब तक वो रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों, भाई जिसको भी मारो श्रेय तो इसको मिलने वाला है। कुछ भी होगा बोले किसने किया, भीष्मक की लीडरशिप में हुआ है, तो बोले मेरे क्रेडिट का क्या, मैं इतना बड़ा योद्धा हूं तो मैं क्या किसी के अंडर में रहकर युद्ध करने वाला ना, मैं अकेले जब तक ये जिंदा है तब तक मैं नहीं युद्ध करूंगा। तो उसने ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा जब तक ये जिंदा है। फिर कृपा, कृपाचार्य का नाम लिया। कृपाचार्य जो थे वो द्रोण के संबंधी थे, अब जानते हो द्रोण के संबंधी, द्रोण की पत्नी जो थी वो कृपाचार्य की बहन थी, और उसके बाद नेक्स्ट अश्वत्थामा, वो सारे द्रोण को रिलेटेड ही बताया। अब अश्वत्थामा उसका बेटा है द्रोण का, तो उसका नाम ले लिया नेक्स्ट। इसका उद्देश्य था द्रोण को प्रसन्न करना, प्रेरणा देना, है ना। नेक्स्ट विकर्ण का नाम दिया, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। अभी विकर्ण तो कोई इतना बड़ा योद्धा था नहीं कि जिनका नाम इस महान योद्धाओं के साथ ली जाए, कर्ण द्रोण ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं के साथ विकर्ण का नाम यूज हुआ ऐसा कोई तो था नहीं वो, लेकिन उसने यूज क्यों किया विकर्ण का नाम, क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो विकर्ण ने विरोध किया था, 100 कौरवों में से और 5 पांडव धृतराष्ट्र को लेकर के सारी सभा, पूरी असत सभा जो थी पूरी, वो सारी सभा में एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने द्रौपदी का पक्ष लिया था, जिसने बोला था कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो और उसने सबके बीच में विरोध किया था, तो उसको दंड भी मिला था, उसको वहां से उसी समय सभा से निकाल दिया गया था कि तुम यहां से निकल जाओ, तो लेकिन वो सत्य को स्वीकार किया और सभा को छोड़ के चले गए। तो वो दुर्योधन के मन में रह गया था कि ये व्यक्ति हो सकता है कि वो हमारा नुकसान कर दे, ना? उस समय तो उसने किया था अपोज, तो ये एक उसका मन में डर था, इसलिए उसका नाम दिया। हालांकि वो कोई इतना बड़ा योद्धा नहीं था, फिर भी उसका नाम लिया। एक्चुअली जब दोनों पक्ष में युद्ध होता है तो उनको पहले ही बोल दिया जाता है कि आपको किसके पक्ष में युद्ध करना है, तय कर लो। एक बार युद्ध शुरू हो गया उसके बाद आपको चेंजेस का अवसर नहीं है। तो पहले तो हुआ था ऐसा, युधिष्ठिर ने बोल दिया जिसको जहां जाना हो जाए, दुर्योधन ने कहा जिसको उधर जाना उधर जाए, इधर आना उधर आ जाए, अपने अपनी निष्ठा चेंज करनी है तो कर लो। तो दुर्योधन का ऐसा इच्छा था कि जो भी होना युद्ध होने से पहले हो जाए, युद्ध के बाद फिर पराजय हो सकती है। सो उसने क्या किया था दुर्योधन ने कि अच्छा आगे क्या है, विकर्ण के बाद कौन है, सोमदत्त, सोमदत्त और पुरुषवा। तो ऐसा पाया जाता था कि दोनों अलग अलग योद्धाओं के निष्ठाएं बदलने का जो समय आता है उससे पहले और एक गेम प्लान किया था दुर्योधन ने। क्या किया था कि सब जो भी आएंगे उन सबको कुछ ना कुछ ब्राइब दे करके अपने पक्ष में कर लो। कोई आता है उसको बोले तुम हमारे साथ अगर हमारे युद्ध में जीतोगे, यू नो ये पार्टी बदलने का अवसर है, बीजेपी जीत गई तो सत्ता पे तुम या तो फिर मंत्री बना देंगे तुम्हें। तो इस प्रकार का काम उस समय भी होता था। तो इस प्रकार से जैसे कृष्ण पांडव के मामा थे, मामा यस शल्य है ना,
पांडव के मामा,
शैल्य पांडव के मामा होते हैं ना,
शैल्य
तो वो जब आ रहे थे तो उनके लिए व्यवस्था किया था दुर्योधन ने, बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी। और दुर्योधन ने खुद नहीं बोला, अज्ञान लोग को भेज दिया था सैनिकों को, कहा कि इनका अच्छा व्यवस्था करो। तो शैल्य को पता ही नहीं पड़ा कि मैं दुर्योधन के पास आ रहा हूँ या फिर कौरवों के पास, युद्ध करने आए थे पांडवों की ओर से। लेकिन उन्होंने स्वागत स्वीकार किया कौरवों का। और ये लोग हॉस्पिटैलिटी भी कैसे करते पूरे मार्ग में, है ना, नाच गाना ये वो सब सब प्रकार का फेस फैसिलिटी सब देते थे। लेकिन बाद में जब पता पड़ा तो क्या चाहिए था, एक्चुअली शैल्य जैसा कोई सारथी पूरे विश्व में नहीं था, कृष्ण को छोड़ करके इतना एक्सपर्ट थे वो चैरियट ड्राइवर सारथी। तो वो जब वो रथ सारथी चलाते है, वो रथ चलाते है तो 50% योद्धा का काम सारथी कर लेता है। वो वहां पर प्रॉपर एंगल सेट करके देता है, फिर एरोस से बचाता है, अलग अलग एरोस से बचाता है, उसको पता होता है कि कौन से वीक पॉइंट होते हैं, कौन से स्ट्रांग पॉइंट होते हैं, सब पता होता है पोजीशनिंग। तो ये एक्सपर्ट सारथी था शैल्य, और कर्ण के लिए उसको यूज करना चाहता था वो। तो उसने ये गेम बना करके शैल्य को अपनी तरफ ले लिया और कर्ण का सारथी बनने का वचन ले लिया उससे। तो इस तरह से दुर्योधन ने बहुत अलग अलग प्रकार के गेम खेले थे। फिर एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, आप जब भी कोई युद्ध करता है, कोई सामने आता है, तो उसका प्लस ये वीक पॉइंट स्ट्रांग पॉइंट ये सबको चेक करना पड़ता है, तभी युद्ध होता है ना। कि जैसे हमारी वीकनेस क्या है, हमारा स्ट्रांग पॉइंट क्या है, सामने वाला का वीकनेस क्या है, उसका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, ये सब देखा जाता है युद्ध करने से पहले, तब जाके युद्ध होता है। सो प्रॉपर लेक्चर में बताया था इस चीज को लेकर के लंदन में कि somebody was criticizing me, कुछ लोग मेरी निंदा कर रहे थे। स्वामी जी यू आर इंट्रोड्यूसिंग दिस हरे कृष्ण मोमेंट, पीपल आर बिकम कावर्डली, दे सिंपली चैंट हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने को कहा किसी व्यक्ति ने कि स्वामी जी आपने हरे कृष्ण आंदोलन शुरू करके लोगों को कायर बना दिया है, ये लोग केवल हरे कृष्ण करते रहते हैं और इनमें कोई शक्ति भक्ति नहीं, हाथ जोड़ के खड़े रह जाते बस। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि हरे कृष्ण आंदोलन जो है उसकी शक्ति का प्रभाव आने वाले समय में आपको दिख जाएगा कि हरे कृष्ण आंदोलन में कितनी शक्ति है, वो तो आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। फिर प्रभुपाद ने कहा इतिहास में दो बड़े महान युद्ध हुए हैं, राम रावण का और महाभारत का, तो इन दोनों में अर्जुन और हनुमान ये हीरोज थे उस बड़े बड़े युद्ध में, और ये दोनों ही वैष्णव थे, दोनों ही भक्त थे और ये दोनों ही विनम्र थे। लेकिन ये दोनों ने ऐसा पराक्रम करके युद्ध जिताया है, तो ये प्रमाण है कि वैष्णव जो होते वो कायर नहीं होते। जब आवश्यकता होती है तो वैष्णव युद्ध भी करते हैं, जब आवश्यकता नहीं होती तो वैष्णव विनम्र रहते, उसको आवश्यक। तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि जब जिस चीज की आवश्यकता होती है वैष्णव उस चीज को ग्रहण करके कृष्ण का काम पूरा कर देते हैं। सो अभी नौवे श्लोक में आप पढ़िए क्या कहते हैं धृतराष्ट्र दुर्योधन महाराज, पढ़िए।
ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्युत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं।
अन्य जो बहव सुरा राइट मदर थे त्यक्त जीविता। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे बहुत सारे योद्धाएं हैं जो लोग मेरे लिए मरने के लिए इधर आए हैं। मदर थे त्यक्त जीविता, अपना जीवन त्याग करने के लिए इधर आए हैं। क्या अर्थ हुआ इसका?
मरने वाला ही
है ना, इसका अर्थ यही हुआ ना। एक्चुअली दुर्योधन ऐसा कहना चाहता है कि ये लोग मेरे लिए मर मिटने को तैयार है, ये अपना जीवन तक बलिदान दे सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद बताए एक जगह पर कि वो एक्चुअली बता रहा है, सच बता रहा है कि ये लोग बलिदान देने वाले नहीं है, इन्होंने दे दिया बलिदान, बस गए काम से, तुम्हारा साइड लिया, खत्म उसका जीवन। मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए ये लोग जीवन बलिदान करने वाले हैं, सब मरने के लिए इकट्ठे हुए इधर। हालांकि उनके पास हथियार है सब प्रकार के, लेकिन मरने वाले अंत में। सो टेंथ श्लोक पढ़िए।
विस्मय रक्षण अपनी यह सेना में बड़ आप हम अपाय हम आप थे, जरे बिनती रक्षित तमनी इस सेना में बड़ मर्यादित थे।
हाँ, तो यहाँ पर ये श्लोक प्रसिद्ध है। क्या श्लोक का शुरुआत? अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तम बलम भीमाभिरक्षितम्। दूसरे में सेकंड लाइन में है बलम भीमाभिरक्षितम्। हाँ, तो पहले बोला अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, भीष्म के द्वारा रक्षित जो हमारा सैन्य बल है वो अपर्याप्त है, असीमित। और भीम ने बनाया वो तो लिमिटेड है। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर दुर्योधन के भाव को बताया है अपर्याप्तम। प्रभुपाद का अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन चेक करेंगे तो अपर्याप्तम शब्द का असीमित प्रभुपाद ने लिखा है शायद, है ना, असीमित असीमित। लेकिन बलदेव विद्याभूषण उसको वो बिल्कुल इसी तरह से बताया असीमित। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा अलग बताते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसका भी दूसरा अर्थ होता है, एक अर्थ तो ये होता है असीमित, लेकिन दूसरा अर्थ ये होता है अपर्याप्तम का होता है इनसफिशियंट, अपूर्ण, इनसफिशियंट, अपर्याप्त। ये पर्याप्त नहीं है, इतने से काम नहीं होगा अपना, अपर्याप्त। और पर्याप्तम भीम का जो पर्याप्त में मींस उनका पर्याप्त, उनसे उनका काम हो जाएगा इतने से,
पर्याप्त है,
सफिशियंट है। तो इनसफिशियंट और सफिशियंट इस तरह से उसका उपयोग किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। हालांकि वो कहना तो अलग चाहता था, लेकिन हमारे आचार्यों ने इस शब्द का दूसरा अर्थ बताया कि विष्णु के द्वारा रक्षित है वो नहीं है, यू नो प्रॉपर नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं है, अपर्याप्तम क्यों है? हमारे पास योद्धाओं की कमी नहीं है, हमारा अपर्याप्तम है इसलिए क्योंकि भीष्म पांडवों का पक्ष लेते हैं। मैं तो चाहता था कि द्रोणाचार्य आप ही कमांडर इन चीफ बने, लेकिन अब क्या करें, जब तक भीष्म है तब तक तो आपको रख नहीं सकते थे, इसलिए मेरा इच्छा ऐसा था कि आपको ही जब जो करना है सब आपको ही करना पड़ेगा, भीष्म के ऊपर इतना सब मत सोचो कि भीष्म है तो करें। नहीं नहीं नहीं, आपको ही करना है सब, इसलिए हमारा तो पर्याप्त है, अपर्याप्त है। और भीम का तो पर्याप्त है, उनका ऐसा कोई है नहीं, उनका सब सही है, ये इसका दूसरा अर्थ होता है। इसलिए कई जगह ऐसा लिखा गया आचार्य के द्वारा कि द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की इस बात को इस तरह से समझा कि वो कह रहा है कि भीष्म जो है वो तो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उनसे कुछ ज्यादा होगा नहीं, जो करना है वो तो आपको ही करना है। तो द्रोणाचार्य का खुशामत, तो द्रोणाचार्य ने इसको इस तरह से समझे। तो हालांकि द्रोणाचार्य भी गलत समझे, दुर्योधन भी गलत समझा, ये ना दोनों ही इसका उदाहरण है। सो दुर्योधन ने कितना एक्सपर्टली एक ही शब्द का उपयोग किया, पर्याप्तम और पर्याप्तम बस, और कितने सारे चक्कर चला दिए। उसमें भीष्म को एक रूप से प्रशंसा भी कर लिया कि भीष्म तो इतना महान है कि उनका जो सैन्य है वो तो सीमित है, लेकिन दूसरे शब्द में ये भी बता दिया कि भाई वो बूढ़े हो चुके, इसे काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा सब कुछ काम, द्रोणाचार्य को करना पड़ेगा, ये भी बता दिया। और हमारे वैष्णव आचार्य ने इसको अलग रूप से बताया, वैष्णव आचार्य ने कहा कि इनके पास जो सैनिक कैपेसिटी है वो कितना भी लड़े फिर भी कम है, और इनके पास पांडव के पास कम थी सेना, बहुत कम थी। तो उसमें फिर भी वो लोग का पर्याप्त है, फिर भी वो लोग कंप्लीट है। तो ये इसका कुछ अपर्याप्तम शब्द का गेम है। द्रोणाचार्य ने, दुर्योधन ने ये डिप्लोमेसी युद्ध की उपयोग की। अभी हम देखेंगे कि 11 श्लोक में क्या कहा गया है, क्या कहते हैं दुर्योधन जी।
अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें।
हाँ है ना, देखो कनेक्शन आ गया ना इसका, क्या कनेक्शन है, दोनों ही अर्थ का कनेक्शन है। इसमें तो भीष्म इतने महान योद्धा है जो इतना अकेले हाथ पूरी कौरव सेना का दायित्व लिया है, इसलिए आप सब लोग भीष्म को हेल्प करना बहुत आवश्यक है। और दूसरा अर्थ क्या है, भाई ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ये करने वाले भी है नहीं, पांच पांडवों को मारेंगे भी नहीं, और तुम लोग सबकी आवश्यकता पड़ेगी, अकेले छोड़ मत देना इनको, तुम सबको भी करना पड़ेगा। और दूसरा प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी कहते हैं कि फिर भीष्म ने, दुर्योधन ने सोचा कि ये बाकी सब लोग क्या पुतले की तरह खड़े इधर, इन लोग का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ तो कुछ देना पड़ेगा, भाई नहीं तुम भी अच्छा काम करो, तुम भी अच्छा काम करो, तुम भी अच्छे योद्धा हो, तुम सबके तुम सब होंगे तभी हमारी टीम बनेगी ना, नहीं तो दुर्योधन ने ये भी सोच लिया। तो इस तरह से दुर्योधन ने उपयोग किया सबको, सब लोग आप हेल्प करना इनको, जो बूढ़े व्यक्ति है इनको हेल्प की आवश्यकता है, राइट। नाउ टेक्स्ट नंबर 12, अभी दुर्योधन का काम खत्म हुआ, अभी 12 नंबर से संजय कंटिन्यू कहते हैं आगे का।
तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की, सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ।
तो ये दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो लाउड हो रहा था, जोर से हो रही थी, और विशेष करके भीष्म बाजू में ही खड़े थे, भीष्म सुन पा रहे थे। और भीष्म ने ये सारी बात को सुनने के पश्चात ऐसा नहीं कि दुर्योधन तुम क्या समझते हो, मैं इतना बूढ़ा ऐसे मेरे बाल सफेद ऐसे ही हुए, मैं तुम्हारी डिप्लोमेसी समझ नहीं सकता, तुम मेरे बच्चे हो छोटे से, और तुम मेरे सामने बड़े बड़े डिंगे कर रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या समझ रहे, नहीं कुछ नहीं। भीष्म ने ऐसा कोई रिप्लाई नहीं किया कि डांट पड़ी या कुछ नहीं, भीष्म ने रिप्लाई दिया शंख बजा करके, भीष्म का रिप्लाई था शंख का। तो भीष्म ने उसको ये मैसेज दिया कि ये जो शंख है ये विष्णु का प्रतीक है, ये नारायण का प्रतीक है, और जहां जहां शंख बजेगा वहां वहां विष्णु की विजय होगी, नारायण की विजय होगी, इसलिए तो कितना भी उछल कूद कर ले शंख बजाऊंगा इसका अर्थ है कि पराजय तेरी निश्चित है, विजय सामने पक्ष में है, क्योंकि कृष्ण सामने पक्ष में है, इसलिए मैं ये शंख का ध्वनि करता हूं, ये क्लियर कर लेता हूं कि तेरी सारी बात का कोई वैल्यू नहीं है, विजय केवल पांडवों को ही प्राप्त होगी। तो ये बताना चाहते थे। मैं मेरा करते हुए करता रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे सामने युद्ध करने आया हूं, लेकिन विजय मेरी नहीं होगी, विजय किसकी होगी, पांडव, ये बताना चाहते थे। तो अभी आगे का पढ़िए 13।
शंख नगाड़े विपुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था,
हाँ जरूर करो। शंख ड्रम कितना सब था, ट्रम्पेट हॉर्न्स इतना सब आवाज, इतना एक साथ करोड़ों लोग इकट्ठे हैं और ये सब बोलेंगे एक साथ, इतना बजाएंगे तो कैसा आवाज आएगा सोचो, कितना आवाज आएगा। और सबके सब अच्छे, ऐसा नहीं कि आज के समय में कि भाई एक तो रिमोट कंट्रोल से काम करता है, वो ट्रम्प अपने कमरे में बैठा होता है और वो दूसरा अपने कमरे में बैठा होता है और फिर वहां से मिसाइल, वो तो दिखता भी नहीं है कहाँ राजा कहाँ पर, वो तो कब पता ही नहीं है, लेकिन वहां से मिसाइल छोड़ते हैं और साधारण आदमी लोग मरते रहते हैं। और उस प्रकार का युद्ध नहीं होता था पहले, राजा सबसे आगे होते, भीष्म इतने बूढ़े थे, भीष्मा ये वो सबसे आगे थे, दुर्योधन सबसे आगे थे, तो राजा आगे रहते हैं सबसे और सेना उनके साथ रहती है। ये पहले के समय का युद्ध होता था, सबके सब इकट्ठे थे उधर, तो सब लोगों ने इतना आवाज किया, इतना यहाँ पर लिखा है कि साउंड वॉज ट्यूमल्टियस, बहुत बहुत ज्यादा आवाज थी। नेक्स्ट वन।
दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए।
हाँ, ये जो शंख है वो युद्ध की घोषणा है, युद्ध कि हम एक शुभ चीज शुरू करने के लिए जा रहे हैं। क्या शुभ चीज है? धर्म युद्ध, ये करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वर्णन है कि अर्जुन और कृष्ण ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, और अभी पहले जब बात हुई तब कहीं पर भी ऐसा सुनने में नहीं आया दिव्य शंख बजाए, यहाँ पर दिव्य शब्द का उपयोग हुआ है क्योंकि दोनों के शंख दिव्य थे, दोनों शंख के नाम भी दिए। नेक्स्ट श्लोक में पढ़िए। तीन है यहाँ पर, कृष्ण का पंचजन्य, पंचजन्य अर्जुन का देवदत्त और भीम का पौंड्र, ये तीन शंख बजाए। तो कृष्ण ने पंचजन्य शंख लिया था समुन्दर में से, ये पूरा कथा है, इसका स्टोरी है किस तरह से पंचजन्य शंख भगवान ने प्राप्त किया था। और अर्जुन को अलग अलग चीज भेंट में आई थी जिसमें अग्नि, अग्नि ने अर्जुन को रथ दिया था गिफ्ट में, तुम युद्ध करोगे मेरा रथ यूज करो, अर्जुन अग्निदेव ने रथ दिया था गिफ्ट में। जो गंधर्व के जो चीफ है चित्ररथ, गंधर्व के सबसे उधर, उन्होंने सफेद घोड़े दिए थे सुंदर, अर्जुन के पास जो घोड़े थे ऐसे घोड़े पूरी युद्ध भूमि में किसी के पास नहीं थे, ऐसे शाइनिंग कर रहे थे घोड़े जो भगवान जिसको चला रहे थे, चार घोड़े आई मीन पांच, चार पांच जो भी होगा, लेकिन वो घोड़े इतने सफेद और इतने ब्यूटीफुल कि दूर से पता पड़ जाता कि अर्जुन का रथ आ रहा है, और उसका रथ भी बहुत तेजस्वी था। और इंद्र ने अर्जुन को शंख दिया था देवदत्त, अर्जुन ने शंख लिया था देवदत्त इंद्र से, और जो तुनीर है अर्जुन का, वो तुनीर में ऐसा वरदान था कि उसमें कभी भी जो बाण हो गए वो खत्म नहीं हो गए, अनलिमिटेड यूज करो जितना करना है, अनलिमिटेड बुलेट्स जितना यूज करना है करो। जब लोग हम छोटे थे टीवी गेम्स खेलते थे, जब बहुत छोटे थे, तो वो अनलिमिटेड बुलेट्स का आता था, अनलिमिटेड मारो जितना मारना है। अर्जुन के पास ऐसे बुलेट्स थे, आई मीन एरोज, अनलिमिटेड एरोज जितना जितना जो करना है। तो वो कृष्ण ने वो प्राप्त हुआ था कहां से? इंद्रों के द्वारा। यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन का नाम साथ साथ में लिया है, पांडव और माधव, क्यों? क्योंकि ये कौन सा श्लोक है? पंद्रह। हाँ, पीछे जो श्लोक में पांडव और माधव का नाम साथ में लिया है, क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ कोई साधारण व्यक्ति तो एसोसिएट कर नहीं सकते, जो उनके समान होते हैं उनको ही उनके साथ पार्षद बनने का अवसर प्राप्त होता है, तो इसलिए उन लोग का दोनों का शंख दिव्य बताया गया था। पिछले श्लोक में कि दिव्य दिव्य संख है, दोनों ही दिव्य हैं। और अर्जुन के पास ये सारी दिव्य सामग्री थी युद्ध करने के लिए, सब ब्लेस्ड है, इधर से ये मिला था, उधर से वो मिला था, उधर से वो मिला था, लेकिन ये सारे लक्षण थे दिव्यता के। सो नाउ अभी इन लोग का जब शंख बजा तब क्या हुआ, लेट्स सी। 16 से 18 तीन श्लोक।
हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए।
और 19 और 20 दोनों पढ़ लीजिए।
इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। Next. उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युक्त हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे।
तो यहाँ पर अलग अलग पांडव के जो शंखों के नाम बताए हैं कि किसने कौन सा शंख बजाया, लेकिन आपको इसमें कोई डिफरेंस प्राप्त होता है वर्णन में?
16-17-18 में यहाँ पे अलग अलग महारथियों का नाम दिए गए शंख तो
नहीं, इसमें 19 नंबर में श्लोक में कुछ अलग चीज पाई जाती है।
गदेवों को विदर्ण करने लगी, कौरवों के राजाओं को विदर्ण करने लगी। कौरवों और से जब बजे तो सामने पक्ष में कुछ उसका इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन पांडव पक्ष में से जब कृष्ण और अर्जुन और लोगों ने जब संघ बजाए तो ये हालत हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों की।
धृतराष्ट्र के पुत्र से उन लोग के हृदय में जैसे बहुत भय लगने लगा, हालांकि ऐसा वर्णन ऑपोजिट साइड में नहीं बताया था कि भीम और अर्जुन कांपने लगे, हाय हाय अब क्या करें, भीष्म द्रोण सब सामने, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पर वर्णन है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांपने लगे, विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र के पुत्र के, धृतराष्ट्र के पुत्रों को। ये बात किसको बताई जा रही है? धृतराष्ट्र को बताई जा रही है। संजय बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र मिस आपके पुत्रों के हृदय जो है वो विदीर्ण हो गए इनके संघ को सुन करके। फिर आगे कहा कि हनुमान के अंकित चिन्ह से अंकित अर्जुन के रथ जो है कपि ध्वज, उसमें अर्जुन विराजमान है और वो युद्ध करने के लिए तैयार है बिल्कुल। और अचानक से कृष्ण को कहा कि मुझे कुछ कहा, आगे आएगा क्या कहा वो तो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे क्षत्रिय इकट्ठा हुए थे इस युद्ध में अलग अलग जगह से, और सब अपना अपना निष्ठा लेकर के सब अपना अपना पराक्रम दिखाने के लिए वहां पर तैयार है। और जहां पर संघ का उच्चारण हुआ तो दोनों साइड से अपना शौर्य अपना सबके रूहे खड़े हो गए संघ का इतना जोर से जब आवाज आने लगी तब। यहाँ पर कपिध्वज शब्द का एक अलग स्पेशल उसका है हनुमान के चित्र संकेत। हनुमान के चित्र का अर्थ होता है कि वहां पर साक्षात हनुमान विराजमान थे उस रथ के ऊपर, और हनुमान का उपयोग नाम इसलिए उपयोग किया गया है यहाँ पर बताने के लिए कि जीत जो विजय है वो केवल अर्जुन की होने वाली है। धृतराष्ट्र, अगर आपके मन में अगर कोई ऐसा शंका है कि इसमें से कोई भी जीतेगा या कोई भी हारेगा, नहीं, एक ही पार्टी जीतने वाली है और एक ही पार्टी हारने वाली है। कौन? पांडव जीतेंगे तो कौरव हारेंगे। धृतराष्ट्र को बोल दिया इनडायरेक्टली। अच्छा, ऐसा कैसे? कभी ध्वज अर्थात हनुमान पहले ध्वज पे आए कैसे? जब वनवास में थे एक दिन ऐसा हुआ कि हिमालय में अभी भी वो स्थान है, अगर आप जाओगे तो वहां पर हिमालय जहां से नेपाल का बॉर्डर आता है, नेपाल के आसपास में उसी स्थान पर जो आपका मुक्तिनाथ मंदिर है ना, मुक्तिनाथ नेपाल में काठमांडू के आगे आसपास में कहीं पर, तो उसके उसी एरिया में उसी आसपास के इलाके में हिमालय में अलकनंदा रिवर बहती है, अलकनंदा। और एक बार द्रौपदी ने पांच पांडवों के साथ वहां पर गुजर रहे थे वनवास के समय, तो द्रौपदी ने दूर से 1000 पत्तियों वाला पंखड़ियों वाला सुवर्ण कमल देखा। सुवर्ण कमल, आज ऐसा होता नहीं, सुवर्ण कमल कैसे मिलेगा, लेकिन ये कोई दिव्य कमल था, वो कभी मुरझाया ऐसा नहीं है, ऐसा सुवर्ण कमल देखा। तो और इतना उसका फ्रेग्रेंस था कि कहीं दूर दूर से उसकी फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतना सुवर्ण कमल। तो द्रौपदी तो आकर्षित हो गई। और पांडव में ऐसा था कि भीम जो है वो द्रौपदी की एक भी ऐसी बात होगी नहीं जो द्रौपदी की इच्छा हो और उसने पूरी ना की। भीम के मन में पहले से ही इस प्रकार का उसकी शक्ति थी बहुत उसमें, तो उसका एकदम क्लियर था द्रौपदी कुछ भी बोलेगा वो फिनिश कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो भीम ने क्या किया, जैसे बोला कि एक कमल है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो भीम बोले उसमें क्या है, लेके आ जाता तुम्हारे लिए लेके आ जाता हूँ, अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करेंगे। तो वो इसलिए उसने कहा कि मैं ये कमल अगर मुझे मिल जाए तो मैं महाराज युधिष्ठिर को ये कमल ऑफर करना चाहता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी लेके आ जाता हूँ। तो भीम तो गया कमल लेने के लिए वहां पर गदा लेकर के। और भीम इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था कि ऐसा नहीं, वो लंबा रास्ता था चढ़ने का पर्वत के ऊपर, तो उसका ऐसा नहीं था कि वहां कोई पशु कोई जंगली जानवर या कोई आएगा, इतना शक्तिशाली था, हाथ में गदा थी और लेके घूम रहा था, ऐसे गदा थोड़ा घुमाएगा शेर भी हट जाएगा, इतना उसमें शक्ति था। और बीच में बड़े कई बार तो पेड़ आ जाते थे रास्ते में चलते चलते, ऐसे पेड़, तो एक लात लगाएगा पेड़ हट जाएगा, एक गदा मारेगा तो पेड़ टूट के गिर जाएगा, तो पूरा ऐसे हिला फुला करके ऐसे, पता नहीं ये पशु लोग भी घबरा गए, तो ऐसा कौन आ गया हमारे यहाँ पर सारा इधर उधर तो फोड़ करके सीधा जा रहा है, यू नो कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा लायन है तो हम इनके सामने नहीं जाएंगे, तो सब लोग भाग गए, सब पशु लोग भाग गए। तो जब वो जा रहे थे इस तरह से, तो रास्ते में देखा कि एक बंदर पड़ा है और उसकी पूंछ लंबी है और पूंछ रास्ते में आ रही है। तो भीम ने कहा, बोले मैं क्षत्रिय हूं, लोगों को दंड दे सकता हूं लेकिन किसी बूढ़े व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता, तो तुम्हारा पूंछ हटाओ यहां से रास्ते से, वो हमारे मार्ग में जा रहा है, हम इसको लांग नहीं सकते। भीम है भाई, कोई छोटा मोटा क्षत्रिय नहीं है। तो पूंछ हटाने को बोला, तो जो बंदर था उसने पहले अपने आप को बंदर ही रखा हनुमान के रूप, हनुमान थे वास्तव में, तो बंदर तो पहले सुना ही नहीं, दो तीन बार बोलने के बाद फिर वो बंदर ने कहा, अरे इतना आवाज क्यों कर रहा है भाई, कितना मैं सुन रहा हूँ काफी समय से, तुम कहीं जंगल में सबको हिला फुला करके सब तोड़ फाड़ करके इधर आ रहे हो, क्यों कर रहे हो, बैठ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ, लो मैं तुम्हें एप्पल देता हूँ खाओ फ्रूट खाओ पास में बैठ जाओ। तो भीम ने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं भीम हूं, यहाँ पर तुमने जो कुछ नुकसान देखा है सब मैंने किया है, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी वृद्ध बंदर को अपमान करूं, इसलिए अपनी पूंछ हटा लो, मुझे आपसे कोई झगड़ा नहीं है, मैं चला जाता हूं। तो कहा कि भाई देख, मैं ठहरा बूढ़ा बंदर, ना मुझसे अपने हाथ हिलते ना अपनी पूंछ, अब तुझे बहुत परेशानी हो रही है मेरी पूंछ से, तो अभी मेरी पूंछ तू ही उठा के रख दे साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो भीम सोचा भाई ये अजीब बंदर है, ठीक है रख देते, उसमें क्या है। भीम ने अपना गदा साइड में रखा और पूंछ उठाने के लिए, पूंछ उठ ही नहीं पाया उससे, इतना मेहनत किया, पसीना पसीना आ गया, है कौन ये, क्या है ये व्यक्ति, कौन है ऐसा कि जिसने अपनी पूंछ नहीं उठा सकता, मैं हद हो गई। और उसका तो क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, जनरल क्षत्रिय का क्या होता है कि जो कुछ पराक्रम नहीं कर पा रहे तो क्रोध में आ जाते हैं, ऐसा कौन है, क्रोध में आ गया। लेकिन जब बाद में देखा कि अपने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है इधर, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो तुरंत दंडवत मार दिया, मेरे चरण में गिर गए, बोले बताओ तुम्हारी असली पहचान बताओ, कौन हो तुम, मुझे 100% तुम कोई साधारण मंकी नहीं हो। साधारण मंकी, मैं एक मंकी को ऐसे उठा करके फेंक सकता था, लेकिन तुम साधारण मंकी नहीं हो, बताओ कौन हो तुम। तो बोले उसमें बताना क्या, बोले मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी वायु के पुत्र हो, मैं भी वायु का पुत्र हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो फिर असली स्वरूप दिखाया, मैं हूँ हनुमान। भीम तो चौंक गए, भीम सोचने लगे वो तो ओ रामचंद्र वाला हनुमान वो जो त्रेता युग में था, अरे बाबा पवित्र हो गया आज तो मैं, हनुमान जी का दर्शन हो गए, बजरंग जी के दर्शन हो गए, बजरंग जी के। तो कहा कि देखिए आपने ये राम रावण का युद्ध हुआ था, उसमें आपने रामचंद्र को सहाय किया था और पूरा युद्ध जीत गए थे, रावण का पूरा सेना नष्ट कर दिया था, तो हम लोग भी धर्म युद्ध करने वाले हैं आगे जाके, और इस समय राम वही राम कृष्ण के रूप में प्रकट हुए है, तो इस समय तुम चलो हमारे साथ युद्ध करने के लिए, तुम्हारे आते ही सारे कौरव ऐसे ही भाग जाएंगे कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो तुम चलो। तो हनुमान जी ने कहा देखो भाई, मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ, जब से रामचंद्र गए मैंने अपना काम धंधा बंद कर दिया है, मैं भी कोई युद्ध वुद्ध में जाता नहीं, मैं अब राम का भजन करता हूँ एक स्थान पर बैठ करके, और कुछ नहीं करता, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा युग है, तुम करो, ये हमारा काम नहीं है अभी, तो ऐसा थोड़ी चलता है। भीम ने कहा धर्म युद्ध हो रहा है, मैं थोड़ा पर्सनल युद्ध कर रहा हूँ धर्म युद्ध हो रहा है, इस धर्म की विजय होगी तो भगवान की इच्छा से होगी, भगवान का इच्छा है। तो भीम ने कहा कुछ तो और दान दीजिए, तो हनुमान जी ने कहा पहले का अपना स्वरूप दिखाया, विशाल विशाल का है स्वरूप। फिर हनुमान ने कहा देखो मैं युद्ध करने तो नहीं आऊंगा, लेकिन तो मैं वरदान दे सकता हूँ। हाँ बताइए बताइए क्या वरदान दे सकते। तीन वरदान दिए शायद अर्जुन को, भीम को, भीम ने कहा, हनुमान ने कहा कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि जब तक, पहला वरदान ये होगा कि मैं तुम्हारा भाई अर्जुन जो है उसके रथ में बैठ जाऊंगा, जो रथ के ऊपर जो ध्वजा है उसके ऊपर मैं बैठ जाऊंगा, तो मैं युद्ध में तो आऊंगा ही, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, मैं ऊपर बैठूंगा रथ के ऊपर, तो मेरा ध्वज रहेगा और तुम्हारा भाई अर्जुन के ऊपर, ये हुआ पहला वरदान। मेरा दूसरा वरदान ये होगा कि युद्ध भूमि में जब कभी भी तुम मेरे छोटे भाई, तुम कभी भी कुछ बोलना चाहोगे, कुछ अनाउंसमेंट करना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे, तो मेरे साथ तुम्हारे साथ मेरा आवाज ऐड हो जाएगा। तो भीम अगर बोलेगा ए, तो पूरा कौरव कुरुक्षेत्र में सुनाई देगा, पूरा का पांडव भी सुन लेंगे, कौरव भी सुन लेंगे, सब सुन लेंगे, यू नो मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, सब सुन लिया, सब ने सुन लिया, सारे सारे दोनों सेना के सब ने सुन लिया। एक्चुअली हनुमान का आवाज उसके साथ जुड़ा हुआ था, भीम के साथ। तो ये दूसरा वरदान था। और तीसरा वरदान भीम ने, भीम को प्राप्त हुआ हनुमान ने दिया कि ये मेरा आशीर्वाद है कि विजय केवल तुम्हारी होगी और तुम्हें तो अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा। ये तीसरा वरदान। तो ये तीन वरदान हनुमान जी ने दे दिए भीम को। तो उसी समय तो बात खत्म हो गई, भाई ये युद्ध होगा तो जीतेगा तो कौन जीतेगा, पांडव ही जीतेंगे। तो ऐसा एक नहीं था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में जिसमें युद्ध होने से पहले पांडवों की विजय निश्चित हो चुकी थी। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन का रथ के ऊपर हनुमान का वर्णन है। नाउ अभी कृष्ण को अर्जुन कुछ कहना जा रहा है, वे दोनों सेनाओं के बीच में आए हैं। तो लेट्स सी क्या कहते हैं अर्जुन, देखो पढ़िए। अर्जुन आवाज आएगा अभी।
अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं।
21 वर्ष तो कम साथ में है। यस, अर्जुन कहता है कृष्ण को कि हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन आया है। तो इस तरह से अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया, रथम स्थापय में अच्युत। सो भगवान सारथी का काम किया इधर। देखो कृष्णा कितने महान है कि सारथी का काम कर रहे हैं। सारथी का कैसा होता है पता है, इतना आवाज होता है। महाभारत के युद्ध में इतना आवाज हो रहा था, ऐसा नहीं था कि एकदम पिनड्रॉप साइलेंट था और युद्ध हो रही थी, ऐसा युद्ध का आवाज इतना नॉइजी होता है। रथ की पहियों की गड़गड़ाहट, चिल्ला चिल्ली होती है, मारने व काटना इत्यादि, इतना आवाज हो रहा था शोर। कैसे अर्जुन कहेंगे यू नो कि कृष्णा अभी मुझे कर्ण के सामने ले जाओ या अभी द्रोणाचार्य के सामने, तो कृष्ण को ऐसे के क्या 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 सुना नहीं है ना, ऐसा ऐसा नहीं होता यू नो। बेग योर पार्डन, ना रिपीट रिपीट, अच्छा उधर जाना था, मैं तो इधर लेके आ गया। ऐसा ऐसा नहीं होता था यू नो। तो उस समय सारथी का काम कैसे होता था कि जो पीछे जो रथी होते हैं वो पांव से लात मारते थे, पैर से लात मारते थे सारथी को कि ऐसे लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड लात मारेंगे तो राइट साइड जाएंगे। तो इस तरह से लात मारने का काम सारथी करता है और कृष्ण सारथी थे और अर्जुन उनको लात मार के बताते थे कि इधर ले जाओ उधर ले जाओ। तो सारथी का काम बहुत मुश्किल है और यहाँ पर कृष्ण सारथी बनना स्वीकार किया अपने भक्त के लिए, अर्जुन के लिए। अर्जुन की लाते खाने को भी तैयार है कृष्ण, मारो लाते, इतनी लाते मारे। फिर ये स्वभाव है कृष्ण का, हमें तो कोई एक ठलकी सी कोई डांट भी दे देगा बोले अपने आपको समझता क्या है। और ये तो भक्त जो है वो भगवान जो है वो अपने भक्त की लात खाने को भी तैयार है। ये है कृष्ण का स्पेशल क्वालिटी। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, मे बी यू माइट लाइक टू रीड, ऑल द लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनल गॉड हेड, आउट ऑफ हिज गॉडलेस मर्सी वाज एंगेज इन द सर्विस ऑफ हिज फ्रेंड। सो आई जस्ट रीड दिस। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अपनी कृपा से अपने मित्र की सेवा के लिए तैयार हुए थे। भक्तों के प्रति अपने प्रेम में उनका कभी भी वो कभी चुपते नहीं है। कहाँ पर है वो श्लोक, कौन सा है? इज दैट द बिग पर्पट? कैन यू चेक वेयर दिस कम्स? ऑल द लॉर्ड कृष्ण द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड। या प्लीज, ओके प्लीज गो अहेड टिल आई स्टॉप। पढ़िए।
श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होवा छता पोतानी अकारण दया ने लीधे सखानी सेवामां परवाया हता। भगवान पोताना ભક્તો માટેના પ્રેમમાં કદી ચૂક કરતા નથી, હંમેશા દ્રઢ હોય છે, તેથી અહીં તેમને અચ્યુત તરીકે સંબોધ્યા છે. સાથી તરીકે તેમણે અર્જુનની આજ્ઞા મુજબ વર્તવાનું હતું અને તેમ કરવામાં તેમણે કશી આનાકાની ન કરી, માટે તેમને અચ્યુત તરીકે સંબોધ્યા છે. ભગવાને પોતાના ભક્તનું સારથી પદ સ્વીકાર્યું, એમાં તેમના સર્વોચ્ચ પદને કશી ઝાંખપ ન હતી. સર્વ સંજોગોમાં તે સમસ્ત ઇન્દ્રિયોના સ્વામી હૃષિકેશ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. ભગવાન અને તેમના ભક્ત વચ્ચેનો સંબંધ મીઠો અને અલૌકિક હોય છે.
ઓકે, સો પડીએ.
ભક્ત પ્રભુની સેવા કરવા સદા તત્પર હોય છે, તે જ પ્રમાણે પ્રભુ પણ પોતાના ભક્તની કોઈ પ્રકારની સેવા કરવાની તક સદાય શોધતા રહે છે.
ભગવાન ભી ચાહતે હૈ કે ભક્ત કા સેવા કિયા જાય. યહાં પર ભગવાન કા અચ્યુત શબ્દ કા ઉપયોગ હુઆ હૈ. અચ્યુત અચ્યુત શબ્દ કા અર્થ બહુત અલગ અલગ હોતા હૈ. જો અચ્યુત કા એક અર્થ હૈ, અચ્યુત કા જો મુખ્ય અર્થ હૈ જો ઇસ યહાં પર ઉપયોગ હુઆ હૈ, વો યહ હૈ કે ભગવાન કભી ભી અપને વચન સે, અપને પ્રેમ સે ભગવાન કભી ચૂકતે નહીં. એક બાર ભગવાન ને કહે જા કૌંતેય પતિ જાને હી નમે ભક્ત પ્રણશતિ, હે અર્જુન યે ઘોષણા કર દો મેરે ભક્તો કા કભી નિરાશ નહીં હોતા. તો નહીં હો સકતા. એક બાર કૃષ્ણ ને બોલ દિયા તો ખતમ, વો હોગા હી. અર્થાત ભગવાન અપને ભક્તો કી સહાયતા મેં કભી ભી ચૂકતે નહીં, ભૂલ નહીં કરતે. દૂસરા અચ્યુત શબ્દ કા અર્થ એ ભી હોતા કે ભગવાન કા પતન નહીં હોતા. ચ્યુત શબ્દ કા અર્થ હોતા હૈ પતન હોના, ઓર અચ્યુત કા અર્થ હોતા હૈ પતન. ભગવાન કા પતન નહીં હોતા, ભગવાન કભી માયા મેં નહીં જાતે. એસા નહીં કે આ કભી ભગવાન ભી ના જાણે જાનકી નાતે કાલ સવાર શું થવાનું છે. ભગવાન કો નહીં પતા, રામચંદ્ર કો નહીં પતા થા કલ સુબહ ક્યા હોને વાલા હૈ. એસે મૂર્ખ નહીં હૈ ભગવાન. ભગવાન અચ્યુત 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 કા અર્થ હોતા હૈ કે વો ગલતી નહીં કરતે. કૃષ્ણ કભી કોઈ ગલતી નહીં કરતે, એસા કભી હુઆ નહીં. અશ્વત્થામાં હતા નરો વા કુંજરો વા દેખો ગલતી કરા દેના, યુધિષ્ઠિર સત્યવાદી થા ઉસે જૂઠ બોલવા દિયા ના. કૃષ્ણ કભી કોઈ ગલતી નહીં કરતે, ઇસલિયે ઉનકા નામ અચ્યુત હૈ. તો ભગવાન જો હૈ વો ભક્ત વત્સલ્ય જો હૈ ઉનકા, વો યહાં પર વિશેષ રૂપ સે બતાયા ગયા હૈ. ક્યા એક અચ્યુત શબ્દ કા જો સબસે મહત્વપૂર્ણ પ્રભુપાદ એક લેક્ચર મેં બતાયા થે કે અર્જુન યે જાનતે થે કે મેં કંટ્રોલર નહીં હું ઓર મેં તો કંટ્રોલ હું, મેં એક દાસ હું કૃષ્ણ કા. પ્રભુપાદ બતાયા કે વો જાનતે થે, લેકિન કૃષ્ણ કો આદેશ દેને કા કામ કર રહા હું મેં. હે અચ્યુત, આદેશ, ફર્સ્ટ આદેશ મેરા લથ લઈ જાઓ. એકચ્યુઅલી આદેશ દેના ભક્ત કા સ્વભાવ નહીં હૈ. ભક્ત કભી ભગવાન કો આદેશ નહીં દેતે, લેકિન અર્જુન આદેશ દે રહા થા ક્યુંકિ વો સારથી કો તો આદેશ હી દેના પડતા હૈ ના. તો અભી ઇસલિયે વો કહે રહે હૈ કે મેં આદેશ દે રહા હું, લેકિન આપ અચ્યુત હો, આપ ભક્ત વત્સલ હો. વાસ્તવ મેં આપકો આદેશ દે નહીં સકતા, કિંતુ આપને મુજે વચન દિયા થા કે મેં સારથી કા સેવા કરૂંગા, સાથી કા બદલા લૂંગા, તો ઇસલિયે તો મેરે આદેશ કા પાલન કરને કે લિયે તૈયાર હુએ થે. ઇસલિયે આપને વચન સે હટ મત જાના, તો યે મેરા રથ જો હૈ વો દોનો સેનાઓ કે બીચ મે લે જાઓ. તો ભગવાન અચ્યુત હૈ, ઓર ઇસલિયે હમ ભક્ત જબ દીક્ષા ગ્રહણ કરતે હૈ તો હમ સબકા ગોત્ર બદલ જાતા હૈ. હમ સબકા ગોત્ર હો જાતા હૈ અચ્યુત ગોત્ર. જબ દીક્ષા હમ ભક્ત જો ભી ભક્ત દીક્ષા લેતે હૈ ઉન ભક્ત કો જો ભી પૂછા જાય કે તુમ કૌન સે ગોત્ર સે હો, તુમ્હારો ગોત્ર ક્યા હૈ, તો સબકા ગોત્ર હો જાતા અચ્યુત ગોત્ર. તો અચ્યુત ગોત્ર સભી વૈષ્ણવ કા અચ્યુત ગોત્ર હોતા હૈ. તો યે ઇસ નામ સે જુડા હુઆ હૈ, અચ્યુત નામ સે જુડા હુઆ હૈ હમારા ગોત્ર. ઓર ભગવાન સબકે હૃદય મેં પરમાત્મા કે રૂપ મેં થે, ભગવાન સારથી કે રૂપ મેં. પરફેક્ટ સારથી હૈ ના, અગર હમારે અર્જુન કે સારથી કૃષ્ણ હૈ और हमारे साथ भी अगर कृष्ण बन जाए तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा, है कि नहीं। भगवान एक्चुअली यही चाहते हैं कि शरणागति लो, मैं तुम्हारा पूरा लाइफ संभाल लूंगा, तुम्हारी गाड़ी मैं चलाऊंगा, विश्वास रखो कि मैं तुम्हें कोई गलत चीज नहीं सिखाऊंगा, विश्वास रखो अर्जुन कि मैं कहता हूं कि अभी द्रोण को मारना है तो अभी मारना है, यू नो फेथ, हैव फेथ इन मी। जब मैं कहता हूं कि अभी भीष्म को ऐसे नहीं मारना पड़ेगा, शिखंडी को रखो इधर तभी मार पाओगे, हैव फेथ इन मी, मैं जो कहता हूं मेरी बात सुनो, यू विल बी सक्सेसफुल, तुम्हारी सफलता होगी। तो ये भगवान चाहते हैं हमसे कि सारथी के रूप में कृष्ण की बात को एक बार मान के देख लो, विजय आपकी होगी, सफल आप ही होंगे अगर कृष्ण की बात को मान के चेक करो। तो भगवान का ये भक्त वात्सल्य जो है वो बहुत ही स्पेशल है। भगवान का ये भक्त वात्सल्य अलग अलग जगह पर पाया जाता है, जैसे अभी अर्जुन का देख लो, तो सारथी के रूप में सारथी का काम केवल रथ हाँकना नहीं है, तो जैसे मैंने बताया लात भी खाते थे, और साथ साथ में जब अर्जुन के रथ थक अश्व थक जाते थे तो रथ को अश्व को खड़े रखना, उसका मसाज करना, उसको पानी डालना पिलाना, फिर उसका घाव वगैरह सब हटाना, ये सब काम कृष्ण करते थे। ये तो नौकर का काम होता है, क्षत्रियों के लिए नहीं होता ये सब काम, ये काम ये करते थे। तो आप सोचिए कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की सेवा के लिए। तो भक्त वात्सल्य है कृष्ण का, कि वो राज यही सुनकर के चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, जो वो बता रहे कि मैं भगवद गीता सुनता हूँ, जब पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना हालांकि आता नहीं कि इसमें क्या लिखा गया है, श्लोक संस्कृत आता नहीं मुझे, लेकिन मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे एक ही दृश्य देखता है कि इतने महान लाखों लक्ष्मियों के पति ब्रह्मा नारद शिव इत्यादि सब जिनकी स्तुति करते हैं, सब बड़े बड़े योगियां जिनका ध्यान करते हैं, सब देवताओं जिनकी अलग अलग पूजाएं करते रहते हैं, सारे वैकुंठ सारे लोग सबके सृष्टि के आदि, ये परमेश्वर भगवान ये अर्जुन का रथ हाँक रहे और अर्जुन की लात खा रहे, अर्जुन का सारथी बने। तो कृष्ण कितने भक्तवत्सल है, कृष्ण कितने दयालु है, कृष्ण में कितना प्रेम है, ये सोच करके मेरी आंखों में से पानी आ रहा है, हालांकि मुझे भगवद्गीता नहीं आता है। तो कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम समझो भगवद्गीता का असली अर्थ। तो यहाँ पर भगवान के भक्त वत्सल्य जो है उसका वर्णन है, क्यों किया भगवान ने ये सब काम, क्यों किया, जस्ट फॉर अर्जुन, अर्जुन के लिए, बस अर्जुन के लिए, और कोई ऐसा नहीं क्यों किया, जस्ट फॉर अर्जुन, अर्जुन के लिए। सो अभी अर्जुन आगे क्या कहते हैं कृष्ण को, वो युद्ध से बताया मुझे ले जाओ, तो ले जाएंगे ना, तो बताया तो ले जाना, तो ड्यूटी करना पड़ेगा तो ले जाएंगे। अभी वो लेके जाके क्या कहते हैं आगे अर्जुन कृष्ण को, या फिर कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। कोई प्रश्न, ओके सभी स्टॉप। भीष्म के गुरु, वेल भीष्म के युद्ध जो मार्शल आर्ट के गुरु थे परशुराम, परशुराम जी ने उनको युद्ध विद्या सिखाया था, लेकिन कुल गुरु थे कृपाचार्य थे, कुल गुरु, अलग अलग गुरु होते हैं, कुल गुरु होते हैं, फिर मार्शल आर्ट के गुरु होते हैं, ऐसे अलग अलग गुरु होते हैं, टीचर मैथ्स के टीचर ये थे, साइंस के टीचर वो थे, ऐसे। भीष्म के माता थे गंगा, स्वयं गंगा नदी, और उनके पिताजी थे महाराज शांतनु, शांतनु